ओम शांति। सभी एंथुजियास्टिक सोल्स पहुंच गए समय पर, तो जो भी समय पर पहुंचे हैं तो वो अपने लिए एक बार ताली बजाएंगे। हमारे सामने डॉक्टर मुकुल भाई जी है। हम मुकुल भाई जी का बहुत बहुत इस सेशन में स्वागत करते हैं, और मैं अन्ना भाई से निवेदन करूंगी कि वो गुलदस्ते और बैच के द्वारा स्वागत करें। सभी कर ध्वनि से भाई जी का बहुत बहुत वेलकम करेंगे। मुकुल भाई जी पिछले 29 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था में राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने साइकोलॉजी में पीएचडी किया है, और आप एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर भी हैं। हम इस संस्था में और खास ट्रांसपोर्ट विंग में भाई जी को देखते आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटीज, वैल्यू बेस्ड गेम्स करा के लोगों के अंदर एक इनर अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं। भाई जी का मेडिटेशन का प्रयोग भी बहुत अच्छा है। कुछ साल पहले रोड एक्सीडेंट्स को लेकर, प्रिवेंशन को लेकर उन्होंने बहुत एक अच्छी कमेंट्री डिजाइन की थी, और जो भी ब्रह्मा कुमारी केंद्र है बोरीवली जोन में, तो ये केंद्र में वो मेडिटेशन कमेंट्री का 40 डेज का प्रयोग भी किया था, और जो हमने गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिक्स भी देखा था कि वो 40 डेज के प्रयोग से रोड एक्सीडेंट के जो प्रोन एरियाज है वहां पर काफी जो है रोड एक्सीडेंट्स कम हो गए थे। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग भाई जी के बहुत सुंदर प्रयोग है मेडिटेशन के, और आज का हमारा टॉपिक भी है हम सफर एक्सप्रेस। तो भाई जी आप सभी को इस एक्सप्रेस में बिठाकर एक बहुत सुंदर जर्नी कराने वाले हैं। सुबह हमने सुहाना सफर सुना और बहुत एंजॉय किया। अब देखते हैं कि भाई जी कौन से यूनिक एक्सप्रेस में हमें ले जाते हैं, तो हम सुनेंगे। भाई भाई से।
ओम शांति, गुड इवनिंग। हम सफर एक्सप्रेस, हम सभी जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम सभी इस बात के अनुभवी हैं कि जब भी हम कुछ ना कुछ सफर करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलना होता है, परिवार से मिलने होते हैं, स्थान देखना होता है, और इसीलिए टूर जो है अपने आप में एक बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस होती है। टूर में कुछ कठिनाइयां आती हैं, उससे भी हम सीखते हैं, हमारे अंदर धीरज हो, हमारे अंदर सहनशीलता, एडजस्ट करने की शक्ति आदि आदि, अलग अलग कल्चर्स को देखना, ये सारे एक्सपोजर्स हमें मिलते हैं। तो क्यों ना आज का जीवन के कुछ लेसन्स, जो कि तीन अलग अलग यूं कहें स्कूल से ली हुई है, एक है भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिकता, दूसरा है मानस शास्त्र, और तीसरा है मॉडर्न मैनेजमेंट साइंस। ये तीन अलग हैं, हाँ है, लेकिन ना भी, क्योंकि ओवरलैपिंग तो है ही, है ना। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं हम सफर एक्सप्रेस में यात्रा करने के लिए। तैयार हैं आप सभी? जी, तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा हम बता देते हैं। हाँ, सो एक भारतीय परिवार, मिडिल क्लास फैमिली के एक सुंदर भारतीय परिवार, ये परिवार है। इसमें आप अपने आप को देख सकते हैं, भले शक्ल तो किसी ना किसी का अलग होगा ही, परंतु ये प्यारा सा परिवार जो है, बच्चों के कुछ दिन के छुट्टी है नवरात्रि के, तो वो जिद करने लगे कि हम गांव पे चलेंगे। हाँ, तो ये बच्ची जो है इनका नाम मीनू है, मीनू, ईशान, और मीनू की मम्मी और मीनू के पापा, ये चारों मिलकर कुछ दिन के लिए, दो तीन दिन के लिए नवरात्रि के समय, दशहरे के समय गांव जाने का सोचते हैं। लेकिन मीनू के पापा ऑलवेज परेशान रहते हैं, और मीनू की मम्मी के अपने परेशानियां, कभी कुछ झगड़ा भी हो जाता है, कभी लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, नाराजगी भी होती है, थोड़ा बहुत रोना धोना भी हो जाता है कभी कभी, बच्चे डांट भी खाते हैं, बच्चे शरारत भी करते हैं, जैसे एक टिपिकल आम आज के दिन के परिवार हैं। तो ये निकलते हैं घर से, और स्टेशन पर समय के थोड़ा सा पहले वो पहुंच जाते हैं। तो स्टेशन के सामने ही एक मंदिर है, तो मीनू की मम्मी कहते हैं चलो भाई आगे, जल्दी आगे, तो दो मिनट भगवान को नमस्ते करके जाते हैं। तो सभी मंदिर में प्यार से भगवान को नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन नमस्ते करते टाइम सबकी प्रार्थना अलग अलग होती है। मीनू के पापा की प्रार्थना है, हे भगवान पैसा कैसे मिले और पैसा बढ़े कैसे। मीनू की मम्मी का प्रार्थना है, हमारे पति थोड़ा शांत हो जाए, ऐसे उलझा हुआ ना रहे, घर में थोड़ा तनाव, बोल चाल में मिठास आ जाए, ये उनका उनकी प्रार्थना है। और बच्चों की तो अलग ही प्रार्थना है, कोई वो बच्ची कहती है, मीनू कहती है कि हमें मार्क्स ज्यादा मिल जाए, बच्चा कहता है हमें स्पोर्ट्स में नंबर वन आ जाऊं मैं, इस प्रकार के अपने एज के हिसाब से अलग अलग प्रार्थनाएं हैं। तो उन्होंने प्रार्थना कर ली और उसके बाद स्टेशन पे पहुंचे, हम सफर एक्सप्रेस आ पहुंचा, और हम सफर एक्सप्रेस में जैसे ही जल्दी से बच्चे चढ़ जाते हैं फटाफट, और बड़े जो हैं वो लगेज उठा के चढ़ते हैं, तो बच्चे अंदर जाके दौड़कर पहुंच गए अपने बर्थ पे, और वहां जो दृश्य देखा उसमें दोनों बच्चों का होश उड़ गया। वो देखते ही रहे बड़े बड़े आंखें करके, और कहते मम्मी मम्मी देखो अंदर कौन बैठे हैं, हमारे साथ वाले कौन बैठे हैं। और वो देखते हैं कि बर्थ के वहां उनके साथ वाले जो हैं वो सब देवियां बैठी हैं, नवरात्रि की देवियां जो हैं वो सब बैठी हैं। तो मीनू पूछती है मम्मी को कि मम्मी ये सब सज धज के बैठे हैं या सचमुच देवियां हैं, हाँ कोई मानव सच के बैठे हैं? तो मम्मी कहते हैं नहीं, ये सचमुच देवियां हैं। तो बोला फिर तो मजा ही मजा है, हम लोग आज बहुत अच्छा सफर होगा, हमारा टूर होंगे। तो हम सफर एक्सप्रेस के ये जो सफर है वो सफर में इस मानव परिवार, ये जो चार लोग हैं, ये मानव परिवार, आज के परेशान मानव परिवार, उस दैवी परिवार से कुछ संवाद करेंगे। क्योंकि देवियों का दर्शन हो गया तो कुछ बातचीत करेंगे ना, कहां जा रहे हैं, कैसे हैं। तो देवियों से जो शिक्षाएं उनको मिली, इन बच्चों को, इनके मम्मी पापा को, वो शिक्षाएं हम लोग धारण करेंगे और देखेंगे क्या शिक्षाएं मिली। और इसके अंदर मुख्य छह शिक्षाएं हैं, सिक्स इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो इसके अंदर हैं, जो प्रश्न के रूप से ये मानव फैमिली उन देवी देवताओं को पूछेंगे, और उन देवी देवताओं का जो जवाब होगा वो हमारे लिए बहुत बहुत रिलेवेंट है। ठीक है, तो ये छह क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं और उसके रेस्पॉन्सेस क्या हैं वो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से इनसाइटफुल होगा, क्योंकि ये मानस शास्त्र का प्रिंसिपल से है, इंडियन स्पिरिचुअलिटी के प्रिंसिपल से है और मैनेजमेंट साइंस के प्रिंसिपल से है। तो आलिए चलते हैं। तो ये सेटल डाउन हो गए हैं, और इसके बाद इन चार में से सबसे बड़बोले जो थे वो कौन था, ये मीनू थी, बच्ची जो है वो सबसे बोलने वाले जो है। तो मीनू ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, मीनू पूछती है आंटी आंटी आप सरस्वती हो ना? तो सरस्वती देवी मुस्कुरा के कहती है हाँ बच्ची मैं सरस्वती हूं, लेकिन मैं आंटी नहीं हूं, मुझे देवी कहो। तो मीनू कहती है अच्छा देवी कहना है, ठीक है, क्योंकि सतयुग में या स्वर्णिम दुनिया में आंटी अंकल बोल के कोई संबोधन नहीं होता है। हा? तो मीनू की मम्मी कहती है भाई उनको नमस्ते करो, तो कहते आंटी नमस्ते। तो देवी भी कहती है हाँ जी नमस्ते। मीनू कहती है अच्छा सरस्वती देवी जी हमें ये बताइए कि हम बहुत ज्यादा मार्क्स कैसे ला सके, टॉपर कैसे बन सके हमारे क्लास में। मैं नंबर 3 नंबर 4 आता हूं, अच्छे हूं पढ़ाई में, लेकिन नंबर 1 कैसे आ सकता हूं, पढ़ाई में कैसे आ सकता हूं। अब सरस्वती देवी जो उनको इनपुट्स देते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। सरस्वती जी कहते हैं मीनू कोई भी भारतीय संस्कृति में जो देवी देवताएं दिखाई गई हैं, उनमें उनके हाथ में जो अलंकार है और उनके जो वाहन है उसको जरूर आप ध्यान से देखना। और कई बार ज्यादातर एक एक देवी या एक एक देवता जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर गुण, मूल्य या शक्ति का रूपक है, रिप्रेजेंटेशन है। और हम लोग जो यहां पे परमात्मा का लेसन किए हैं, हमें तो यहां तक तो स्पष्ट हो ही गया है कि देवी देवता और परमात्मा, ईश्वर जिनको कहते हैं, परमेश्वर परमात्मा, वो दोनों अलग हैं। इस बात की स्पष्टता तो हमें मिली है, जिनका देह है वो परमात्मा नहीं हो सकता, और परमात्मा एक है, सर्व धर्मों के लिए सभी के लिए एक है परमात्मा। ठीक है, और ये है देवी देवता। और देवी देवता में कुछ ऐसी देवी देवताएं हैं जिनके रूप कई बार एनिमल फॉर्म पे भी हैं, जैसे एलिफेंट गॉड है, मंकी गॉड है, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं जिसके रिप्रेजेंटेशन है। तो भारतीय संस्कृति में हमारे पूर्वज जो है हमें बहुत कुछ इसके द्वारा सिखाना चाह रहे हैं। तो सरस्वती जी बता रहे हैं मीनू देखो हमारे हाथ में क्या क्या अलंकार दिखाए गए हैं। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं सरस्वती जी के हाथ में कौन कौन सी अलंकार है। और मीनू के प्रश्न याद है ना कि हमें टॉपर बनना है, बेस्ट बनना है पढ़ाई में, स्कूल में, और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है, उसके लिए मुझे क्या करना है। तो सरस्वती जी कहती है तुम्हें 5 चीजें करनी है। और पहला चीज है जो मेरे हाथ में तुम देख रहे हो वो है किताबें, शास्त्र या किताब, बुक। तो वो ज्ञान की प्रतीक है। ज्ञान अर्थात क्या? अंडरस्टैंडिंग। केवल अंडरस्टैंडिंग ज्ञान है, समझ। तो पहली बात, कोई भी चीज को जब हम सीख रहे हैं, और ये केवल बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी बात को अगर हम सीख रहे हैं, हम मिडिल मैनेजमेंट में हैं, हमें मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में भेजा गया हायर अप स्किलिंग करने के लिए, या हम प्रमोशन के वर्ज पे हैं, प्रमोशन के पहले कई ट्रेनिंग्स होते हैं, उसके बाद कुछ असेसमेंट्स होती हैं। तो जिंदगी पे सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और उस कंटिन्यूअस सीखने के प्रोसेस के बीच सरस्वती जी कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग की गहराई होनी जरूरी है। केवल पढ़ के, रट के, रोट मेमोरी से नहीं होगा, ये पहली बात है। अच्छा, दूसरी बात, उससे नेक्स्ट लेवल जो है वो है स्किल अर्थात विद्या। सरस्वती को पढ़ाई की देवी के रूप से जाना नहीं जाता है। सरस्वती किसकी देवी है बताइए? विद्या की देवी है, है ना? विद्या की देवी है। तो पढ़ाई और विद्या में अंतर क्या है? हम भारतवासी अंग्रेज के टाइम से पढ़ाई इज इक्वल टू विद्या कर डाले हैं। मार्क्स इज इक्वल टू नौकरी का पगार, पढ़ाई इज इक्वल टू विद्या, इस प्रकार से हमारी समझ हो गई है, और यहां प्रॉब्लम की शुरुआत है। तो सरस्वती देवी कहती हैं कि आपने जो नॉलेज को धारण किए उसको आपको अप्लाई करना है, उसको आपको प्रयोग करना है। प्रयोग करना, इसको विद्या कहते हैं। नॉलेज स्विमिंग, आप एक स्विमिंग के ऊपर बहुत सुंदर बुक पढ़ रहे हैं, आप साइकिलिंग के ऊपर बुक पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो देख के स्विमिंग भी ना हो पाएगा ना ही साइकिलिंग हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए विद्या को धारण करने के लिए नॉलेज और स्किल दोनों का संतुलन, समन्वय एक साथ चाहिए, तो ही उसको विद्या कहा जाता है। सो नॉलेज और उसका प्रैक्टिस, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको स्किल कहा जाता है, और इसीलिए वीणा दिखाया गया है। दूसरे हाथ में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, वो है विद्या, स्किल। तीसरी हाथ जो है, ऊपर वाली हाथ जो है, अच्छा, आप अगर किसी को सर्वोपरि दिखाया गया है वो राइट टॉप हैंड। सर्वोपरि हाथ में क्या है? सरस्वती जी का यहां चित्र में क्या दिख रहा है? जप माला है, माला है। तो बिनू पूछती है कि ये जप माला तो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो बुजुर्ग लोगों के लिए है, माला फेरते रहते हैं, मेरा दादा दादी नाना नानी उनके लिए है। सरस्वती जी कहते हैं मैं तुमको कैसे समझाऊं, इसीलिए मैं जप माला रखा हूं ताकि तुम समझ सको। किसी भी बात में महारत हासिल करने के लिए तीन क्वालिटीज की आवश्यकता है, तीन क्वालिटीज की आवश्यकता है। नंबर वन इज फोकस, एकाग्रता। फोकस की बहुत जरूरत है, और माला जपना, माला जो है वो फोकस का रिप्रेजेंटेशन है। स्टूडेंट को कोई माला जपना नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट जब पढ़ रहा है तो उनको अनडिस्ट्रैक्टेड वे में फोकस करना जरूरी है। और ये विशेषता दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनका एक कॉमन व्यक्ति, एक कॉमन गुण है, वो जिस समय जिस चीज में फोकस करते हैं उनका वो 100% फोकस रहता है, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। और आज के दिन पे अगर हम मोबाइल पे मैसेजिंग के टाइम पे कोई मैसेज आया है या कोई व्हाट्सएप मैसेज आई है और ट्रिंग करके एक बार आपका फोन बजता है, तो आप देखिए कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इससे बड़ी सजा हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए फर्स्ट थिंग इज फोकस। फोकस के बिना कुछ भी आगे नहीं हो सकता। दूसरा, जप माला क्यों दिखाया गया है? अच्छा, जप माला से करते क्या है? वो स्टैटिक रखते हैं, जेब में डाल के रखते हैं, करते क्या है जप माला से? फेरते हैं, फिरते हैं, एक राउंड फेरते हैं, फिर दूसरा राउंड फेरते हैं, ऐसा है। रोजरी बीड्स इस्लाम में भी जपमाला है, क्रिश्चियनिटी में भी जपमाला है, रोजरी जिसको कहते हैं, और हमारे वैजयंती माला 108 जो जपमाला होते हैं वो होते हैं हिंदुइज्म में, उनके बीड्स के संख्या अलग अलग होता है। लेकिन ये जपमाला जो है उसको रिपीट किया जाता है ना, तो विद्या का दूसरा रिक्वायरमेंट है रिपीट रिपीट रिपीट। जितना रिपीटेशन होंगी उतना उस स्किल में परफेक्शन आती जाएगी। सो फर्स्ट था फोकस, सेकंड है रिपीटेशन। जितना आप रिहार्श करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिपीट करेंगे उतनी अच्छी तरह से उस चीज अंदर में बैठता जाएगा, और यहां तक उसका परिणाम होगा जिसको मसल मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी हमारे मस्तिष्क के भीतर होती है ना, लेकिन मसल मेमोरी क्या है, हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा, हमारा शरीर हमारे इंस्टिंक्ट्स उस तरीके से रेस्पॉन्स करेगा जिस तरीके से हम अपने को ट्रेन किए हैं। दिस इज द नंबर टू रिक्वायरमेंट। और तीसरे रिक्वायरमेंट है, और ये बहुत क्रिटिकल है, और सरस्वती देवी कह रही है कि आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं, कोई भी चीज आप करते हुए अगर एंजॉय करना चाहते हैं, बोरिंग ते बोरिंग टास्क हो, बोरियत वाले टास्क हो, कौन कौन एंजॉय करना चाहते हैं कोई भी चीज करते हुए हाथ उठाइए, कितने भी बोरियत वाले टास्क। ओके ठीक है, हम सभी एंजॉय करना चाहते हैं। सरस्वती देवी का टिप है, अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं कोई भी चीज को, तो आप अपने अवेयरनेस को बना के रखिए, अवेयर होके करिए, सुजाग होके करिए। जो भी चीज आप कर रहे हैं उसको पूर्ण सुजागता के साथ करिए, और एक चीज का ध्यान रखो। सरस्वती मीनू से बात कर रही है, मीनू को कह रही है, मीनू बड़े बड़े आंखें करके सुन रही है, तो देवी जी कहती है कि मीनू एक चीज का ध्यान रखो, तुम्हें नंबर वन बनना है ना, बहुत आसान है, एक ही चीज करना है। फर्स्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद सेकंड टाइम जो प्रैक्टिस करोगे, फर्स्ट टाइम के प्रैक्टिस से डेल्टा बेटर तुम्हें करना है। क्या करना है, फर्स्ट टाइम की प्रैक्टिस से सेकंड टाइम प्रैक्टिस क्या करना है, थोड़ा सा बेहतर करना है, और सेकंड टाइम से प्रैक्टिस से थर्ड टाइम जब आप रिपीट करोगे क्या करना है, और थोड़ा बेटर, और थर्ड टाइम से फोर्थ टाइम क्या करना है, और थोड़ा बेटर। सो एवरी टाइम तुम्हारा बेंचमार्क बाजू वाले नहीं होगा, तुम्हारा बेंचमार्क तुम्हारे क्लास में पढ़ने वाले या हमारे लिए हमारे साथ नौकरी करने वालों के साथ हमारे कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद के साथ है। एवरी टाइम आई परफॉर्म, कुछ भी चीज मैं कर रहा हूं, पहले से थोड़ा बेटर करना होगा। आप इस संस्था में शांतिवन में यहां आए हैं शिविर के लिए, ये जो कॉन्फ्रेंस के लिए, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कम कॉन्फ्रेंस के लिए, हम यहां पे हो सकता है टोटल आज तक 10 मेडिटेशन सेशंस में भाग लिए हैं। ओके, और 3-4 सेशंस आपको मिलेंगे। क्या हम ये एक टारगेट ले सकते हैं, हमें एक ही चीज करना है, हमें कोई एकदम बड़ा योगी बन जाना है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन क्या मैं ये कर सकता हूं कि आज जो आफ्टरनून सेशन में, मॉर्निंग सेशन में जो मैं मेडिटेशन किया, और अब का सेशन में जो मैं मेडिटेशन करूंगा मैं पहले से बेटर करूंगा, और कल मॉर्निंग को जो मेडिटेशन सेशन होगा वो आज से थोड़ा सा बेटर मुझे करने का लक्ष्य रखना है, और लक्ष्य रखेंगे तो होना ही है। तो ये हो गया तीन लेसन्स कि नॉलेज इज नॉट द एंड, नॉलेज हैज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू स्किल, तब वो विद्या कहा जाता है। और उस स्किल को, नॉलेज को डेवलप करने के लिए अनडिवाइडेड फोकस्ड अटेंशन चाहिए, साथ साथ चाहिए रिपीटेशन, और साथ साथ चाहिए अवेयरनेस फॉर ईच रिपीटेशन। अब मीनू कहती है ये तीन तो समझ में आया, लेकिन आपके ये लेफ्ट हैंड में जो एक मटका है उसके अंदर क्या है, तो देवी जी कहती है उसके अंदर पानी है। आप पानी लेके, ये आपका ड्रिंकिंग वाटर बॉटल है क्या, देवी बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये ड्रिंकिंग वाटर बॉटल नहीं है, ये मेनू तुमको सिखाने के लिए है। पानी से मैं क्या सीखूंगा, तो देवी कहती है पानी जिसमें भी आप ढालते हो, जिसमें भी आप पोर करते हैं, इट टेक्स दैट शेप, यस और नो? दैट इज द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स. वो ऐसे कैसे भी कॉम्प्लेक्स शेप हो, उस शेप में पानी अपने को एकोमोडेट कर लेता है, एडाप्ट कर लेता है. तो ये एडाप्टेबिलिटी जो है, ये खास जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं, जिन्हों को आगे बढ़ना है, जिन्हों को जीवन में तरक्की करना है, उन्हें कुछ चीज को अनलर्न करना जरूरी है और कुछ चीज को, गुड हैबिट्स को एडॉप्ट करना जरूरी है. हम ये कह नहीं सकते कि नहीं मेरा तो ऐसा ही हैबिट है, नहीं ऐसा नहीं होगा. आई हैव टू पे अ प्राइस एंड दैट प्राइस इज इनकल्केटिंग सर्टेन गुड हैबिट्स. जो हमारे पर्टिकुलर, हमारे जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, हर एक का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है, तो उस लक्ष्य के लिए मुझे कुछ हैबिट इनकल्केट करना ही होगा. और वो प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी हो सकता है. एक स्टूडेंट के लिए कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स हैं, एक मे बी लोको पायलट के लिए कुछ हैबिट्स हैं, तो उस हैबिट्स को हमें ढलना ही है, एंड दैट इज द वाटर्स. और हंस जो बैठा हुआ है, हंस का क्या काम है? हंस कहा जाता है कि वो क्या करता है, अलग करता है, दोनों को सेपरेट करता है. अच्छा, आप देखे हैं कोई ऐसे करते हुए? सुना है. वो कहते हैं मोती वो अलग कर लेते, मोती चुगना आता है. ये एक कहावत है, इट डजंट हैपन एक्चुअली, लेकिन हंस की ये महिमा है. राइट नाउ हंस का क्या काम है? प्रायोरिटाइज करना. हमारे सामने बहुत सारे स्टिमुलस आएंगे, एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, एज ए प्रोफेशनल, एज ए यू नो एग्जीक्यूटिव, एज ए मैनेजर, एज ए सुपरवाइजर, एज ए बिजनेसमैन, एज ए हाउसवाइफ, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे. मुझे डिसाइड करना है, मेरा जो ध्येय है, मेरा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए मुझे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है. तो मीनू तो खुश हो गई. तो मीनू समराइज करती है, ओके ठीक है, तो नॉलेज काफी नहीं है, नॉलेज के साथ चाहिए एप्लीकेशन, अप्लाइड नॉलेज चाहिए, उसी का ही वैल्यू है. और तीसरी बात है फोकस चाहिए, रिपीटेशंस चाहिए, और साथ साथ एडाप्टेबिलिटी चाहिए. और कौन सा चीज मुझे उठाना है, कौन सा चीज मुझे उठाना नहीं है, एज ए स्टूडेंट मुझे कहां समय लगाना है, समय लगाना नहीं है, उसके जानकारी, उसकी परख मुझे होना चाहिए. अब मीनू का भाई सुन रहा था, ईशान चुपचाप बैठ के सुन रहा था. तो अभी ईशान बोलता है, अच्छा देवी जी मेरा एक क्वेश्चन है. और ईशान बहुत ऑनेस्टली वो क्वेश्चन पूछता है देवी जी को. वो कहता है ईशान, लड़का मीनू के भाई, कि देखिए हमें ना बहुत ज्यादा महत्व का आकांक्षा है. आई वॉन्ट टू बी ऑलवेज इन द लाइमलाइट. हमें सब आगे रखे, हमें सब पूछे, हमें महत्व दे, इस चीज का हमें बहुत अंदर होता है. हमारे फ्रेंड्स हमें अगर इग्नोर करते हैं, हमारे बड़े अगर हमें इग्नोर करते हैं, हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स अगर हमें इग्नोर करते हैं और किसी को महत्व देते हैं, तो मुझे बहुत बुरा फील होता है. तो देवी जी हम ऑलवेज महत्वपूर्ण कैसे बन सके, हम जीवन में वैल्यूएबल कैसे बन सके, ताकि आई गेट वैल्यू एवरीवेयर. ये समस्या हम सभी के साथ है या नहीं? ये उस ईशान बेटा का क्वेश्चन है या अंदर बैठा हुआ हम सभी के बीच में एक ईशान बेटा है? हाँ या ना? महत्व का आकांक्षा होता है ना, हाँ या ना? ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, इट्स स्पॉन्टेनियस, ठीक है. लेकिन कहां गलत है, कहां गलत नहीं है, वो हम आगे देखेंगे. तो ईशान तो पूछ लिया. अब इसका क्वेश्चन, इसका आंसर देने के लिए सरस्वती जी कहते हैं, ईशान इसका आंसर जो है ना, आप मेरे भाई से लो. मेरा भाई, ये डिपार्टमेंट मेरा भाई का है और वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझाएगा. सरस्वती जी का भाई कौन है? ये आ गए गणेश जी, आ गए गणपति बाप्पा. तो गणेश जी तीन उंगली से इशारा कर रहे हैं ईशान को, ईशान तुम्हें ये तीन चीज प्रैक्टिस करना होगा, अगर तुम ये तीन चीज करते हो तो तुम्हारा वैल्यू ऑलवेज बना रहेगा। अब मुझे आप सभी देवियों और सज्जनों से ये क्वेरी है कि आप किसी को वैल्यू क्यों देते हैं और कब देते हैं, बताइए मैम, बताइए क्यों देते हैं? बैठ के ये स्कूल नहीं है क्वालिटीज के लिए, बट हाउ डज इट क्वालिटी, ठीक है, और क्यों वैल्यू देते हैं? एक्सपीरियंस, सो सिमिलर टू क्वालिटी, राइट? हाँ जी, हाँ, फेमस पर्सन क्वालिटी, इट इज द सेम, बट उसके अलावा भी वैल्यू देते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आप यहां आए हुए हैं, इसके बाद घर जाएंगे, सोचिए आप घर लॉक करके आए हैं, हस्बैंड वाइफ कपल दोनों आए हैं यहां पे और घर में कोई है नहीं। इसके बाद जिस दिन आप जाएंगे, आपके घर के मेड जो है, सफाई करने वाले व्यक्ति जो है, उनको आपको फोन करना होगा, तो आप महत्व देते हैं या नहीं उस चीज के लिए? महत्व देते हैं, यस और नो? दूध वाले अगर नहीं आए तो, घर में बच्चे हैं और घर में दूध देने वाले नहीं आए तो आप फोन करेंगे उनको, यस और नो? तो यहां क्या, अच्छा टायर पंचर हो गई है आपका, आप कभी टायर शॉप के बारे में कुछ सोचे हैं? सर्विसेस, यस। तो टायर पंचर होने से आप क्या ढूंढते हैं? चारों ओर देखते हैं कहां पे टायर पंचर ठीक करने वाले मिलेंगे। सेफ्टी, जी जी। अच्छा, आपके पास नॉलेज है, स्किल है भी, मेहनत है ना, थोड़ा हाथ काला होगा वो भी है, कपड़ा खराब होगा, कितना भी करिए, बड़े टायर अगर है, भारी टायर अगर है और धूल मिट्टी वाली रास्ता है, वहां टायर चेंज करना होगा, थोड़ा तो हाथ काला होगा और घुटने भी काले होंगे थोड़ा थोड़ा। तब हम ढूंढते हैं आसान तरीका, कोई टायर वाला मिल जाए जो कर दे, स्किल। तो गणेश जी कहते हैं कि देखिए, आपको अगर महत्वपूर्ण बनना है जीवन में, लाइमलाइट में रहना है, और ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ट्रांजैक्शनल है, ये तीन पॉइंट्स गणेश जी हमें बता रहे हैं कि आपको अगर वैल्यूएबल बनना है तो एक है आपकी उपस्थिति दूसरों को खुशी दिलाना चाहिए, उनके प्रेजेंस से आपको अच्छा फील होना चाहिए। तो यहां किसी ने कहे थे आप में से कि फेमस व्यक्ति हो, हा? उनके एक्सपीरियंस हो या उनकी कोई बहुत स्पेशलिटी हो, तो कोई ऐसे स्पेशलिटी स्पेशल व्यक्ति के साथ जब आप मिलते हैं तो बिना कारण से आपको खुशी होती है, क्यों? और आप कहते हैं मैं एक फोटो ले सकता हूं आपके साथ, सेल्फी ले सकता हूं, क्यों कहते हैं आप? उनकी महानता के साथ आप जुड़कर आपको अच्छा लगता है, उनसे आप कुछ मिलने वाला नहीं है। उसी तरीके से आपके मित्र के साथ जब आप मिलते हैं, फ्रेंड के साथ, वहां कोई ट्रांजैक्शन है क्या? वहां कोई लेन देन है क्या? फ्रेंड के साथ मिलके केवल उनकी उपस्थिति में खुशी होती है। अगर आपको यहां पे भी आप कई फ्रेंड्स आए होंगे, आपको जब किसी ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले किसी ने पूछा, देखिए ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग का प्रोग्राम है, तो हो सकता है पहले ही आपके सहकर्मी, आपके कलीग से आपने पूछा, तू चलेगा क्या, चल साथ में चलते हैं। कितनों ने ऐसे पूछा किसी को, देखिए हाथ उठा रहे हैं कुछ, राइट? आप कोई खड़ूस व्यक्ति को क्यों नहीं पूछिए, चलिए जी आपका बहुत जरूरत है आप चलिए हमारे साथ, जिसके साथ आपका झगड़ा मन मुटाव हुआ, उनको क्यों नहीं पूछे, चलिए जी खड़ूस आप भी हमारे साथ चलिए? आपने तो ये नहीं पूछा कि आप सुधर जाओगे तो दुनिया भला होगा, आपने आपके प्रिय व्यक्ति के साथ आने का तय किया, ये स्वाभाविक है। फर्स्ट पॉइंट विच इज टॉकिंग अबाउट शेयर हैप्पीनेस, हम अपने मित्र से मिलते हैं, घर वालों से मिलते हैं, एक दूसरे के उपस्थिति में हमें खुशी का आभास होता है, और सो दिस इज वन रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज अ वेरी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलरली प्रोफेशनल क्षेत्र में। देखिए, एक है कार्य करना और दूसरा है अटक जाने से हाथ उठा देना, अब क्या करना है, ये अब क्या करना है, अभी क्या करूं, क्या करना है, अटक गया मैं, तो ये अटकने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सोचिए आप बॉस हैं, आपके नीचे चार सबॉर्डिनेट्स हैं, आप चारों को अपने अपने जिम्मेवारियां दिए हैं और किसी का अटक जाता है, वो बार बार आके आपको पूछता है, तो आप उस व्यक्ति को अगला जिम्मेवारी देना चाहेंगे या नहीं? आप उनको देंगे जो संभाल लेंगे। यहीं देखिए ना, ये साउंड सिस्टम के हमारे दैवी भाई लोग सेवा दे रहे हैं, तो इनके टीम में अगर कोई ऐसा हो, अच्छा अभी क्या करना है, चल नहीं रहा है, अच्छा अभी क्या करना है, अरे भाई थोड़ा दिमाग तो लगाओ खुद। तो उस व्यक्ति को अकेला कोई प्रोग्राम हो रहा है वहां, जो भी निमित्त है वो छोड़ पाएंगे क्या? है ना? तो ये चीज है, उन लोगों का वैल्यू होता है जो कोई समस्या का समाधान दे पाते हैं। तो एबिलिटी टू रिजॉल्व एन इशू, इसीलिए गणेश जी का दूसरा नाम क्या है? विघ्नहर्ता। एक है मंगल मूर्ति, मांगल्य, खुशी दिलाने वाली, पॉजिटिविटी दिलाने वाली, सकारात्मकता दिलाने वाली। तो हमारे व्यक्तित्व के उपस्थिति जहां मांगल्य लाती है, जहां खुशी लाती है, जहां पॉजिटिविटी लाती है, जहां पॉजिटिव वाइब्स लाते हैं, ऐसी उपस्थिति प्रेफर्ड है। दूसरा है एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड दिस इज द बिगेस्ट 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 क्वालिटी जो एक प्रोफेशनल रह सकता है। हम सभी जानते हैं जो प्रोफेशनल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कि एक नॉर्मल नौकरी करने वाले व्यक्ति और वही व्यक्ति नौकरी से हटकर जब कंसल्टेंसी में प्रवेश करता है तो उनका फीस बहुत अधिक बढ़ जाता है। व्यक्ति वही है, दिमाग वही है, परंतु वो बन गया कंसल्टेंट। उसका कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण है कंसल्टेंट को समाधान देना होता है। कंसल्टेंट को कहीं कोई अटक गया है, उस अटका हुआ चीज को, उलझी हुई चीज को सुधारना होता है, और इसीलिए गणपति जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो गणेश जी ईशान को बताता है, ईशान तुम्हें अगर महत्व पाना है तो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना बहुत बहुत जरूरी है, और तुम्हारे बिहेवियर ऐसी हो जहां लोगों को अच्छा लगे, लोगों को अपनापन का एहसास हो, लोगों को प्यार का एहसास हो, वो फील करे कि ये हमारा है। और तीसरी बात है, हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। आप सब सेठ बैठे हुए हैं, किसी ना किसी का सेठ तो है ही। अच्छा, कुछ ड्राइवर है जो सेठ से बड़े खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? वो जानते हैं सेठ हमारी दिवाली में जो है ना खातिरी बहुत अच्छी करती है। सेठ अभी माउंट आबू गए हैं तो हमारे लिए कुछ प्रसाद पेड़ा, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो कहते हैं सेठ अच्छे हैं। अच्छे क्यों है? पगार उतना ही है, लेकिन आप उनका ख्याल रखते हैं। यू टेक केयर ऑफ देम, और टेक केयर व्यवहार से हो सकता है, बातों से हो सकती है, आचरण से हो सकता है, और साथ साथ वस्तु से भी हो सकता है, है ना? तो ये तीन चीज रहना, ये हमें लोकप्रिय बना देता है। नॉट लोकप्रिय ओनली आउटसाइड, बट हमारे प्रोफेशनल क्षेत्र में, हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में, हमारे मित्र संबंधियों के साथ, सभी जगह हमें लोकप्रिय बनाते हैं। तो ये हो गया ईशान और मीनू। मीनू बोलना बंद ही नहीं कर रही है, उसका पापा अभी थोड़ा सा खदेड़ता है मीनू को, ए तू चुप कर, तू बोलता रहेगा तो मैं लक्ष्मी जी से कब बात करूंगा? मेन मुद्दा में आने दे, तेरे को ये खरीदना है, वो खरीदना है, आईफोन चाहिए, ये चाहिए, कैसे होगा? पापा के पास पैसा चाहिए। तो अब तू रुक, अब मुझे लक्ष्मी जी को पूछने दीजिए। तो मीनू का पापा और मम्मा अब पूछना शुरू करता है। लक्ष्मी जी भी बैठे हैं ना ट्रेन में, सरस्वती लक्ष्मी दोनों बैठे हैं, दुर्गा जी भी बैठे हैं। तो मीनू स्ट्रेट फॉरवर्ड वही दिल की क्वेश्चन करते हैं जो हम पूरा कर रही है सेंटेंस, जो हम सभी के क्या नहीं है, सभी संत बैठे हैं, कोई पैसा नहीं चाहिए किसी को, पैसा चाहिए या नहीं, हाँ या ना, नहीं तो फिर दो स्लाइड स्किप कर देते हैं, फिर दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, दुर्गा के टॉपिक। लक्ष्मी जी चाहिए या नहीं चाहिए? भाई लक्ष्मी किस किस को? भाई आज नवरात्रि है, हाँ पहले दिन आप लक्ष्मी को नाराज नहीं करिए, भाई हाथ उठाइए। वो माता जी हाथ नहीं उठा रही है, माता जी पैसा कम होगा, हाथ उठाइए ऊपर। हाँ जी, हाउ टू मेक मोर मनी. मनी तो सभी बना रहे हैं लेकिन हाउ टू मेक मोर मनी. लक्ष्मी जी मुस्कुराती है और कहते हैं, हे मानव, ये क्वेश्चन सुन सुन के हमारा कान जो है ना दर्द होने लगा है, लेकिन हे मानव तुम देखते क्यों नहीं हो मेरे हाथों को, मेरे हाथों में क्या क्या है ये आप देखते क्यों नहीं हो. अच्छा, लक्ष्मी जी के दो हाथ जो हैं, हम लोग कौन सा हाथ को ज्यादा देखते हैं, कौन से हाथ को देखते हैं? देखिए वहां कौन सी चीज को आप देखते हैं ज्यादा, नजर किस तरफ रहता है, जहां से गोल्ड कॉइन निकल रहे हैं, अशरफिया निकल रही है. अच्छा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, ओके, दोनों हाथ का अपना महत्व है, ज्यादातर लोग राइटी होते हैं. दोनों हाथ में सीधा हाथ कौन सा है? राइट हैंड है, यस. और राइट हैंड में अगर कुछ तकलीफ हो तो काम करना मुश्किल हो जाता है, आप साइन नहीं कर पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड. तो लक्ष्मी जी पूछती है, आप हमारा लेफ्ट हैंड देख रहे हो, राइट हैंड क्यों नहीं देख रहे हो? वो कहते हैं, कैसे देखूं, अपने को तो धन चाहिए, आप ऐसे करके बैठे हैं, वो मैं क्या देखूं, उससे कुछ निकल नहीं रहा है, आप सिर्फ ऐसे करके कुछ वहां दिखाया गया है लेकिन कुछ तो निकल नहीं रहा है, मेन मसाला माल तो लेफ्ट हैंड में आपका उसके अंदर है, मटका के अंदर है. लक्ष्मी जी कहती है, यही तो तुम्हारी गलती है, राइट हैंड में जो पोस्चर में लक्ष्मी जी बैठे हैं वो ये पोस्चर है. ये पोस्चर क्या है, इसको अभय कहा जाता है. अभय, ये आशीर्वाद है और ये अभय है. दिल्ली एयरपोर्ट में भी आप बहुत सारे मुद्रा देखे होंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अराइवल का लॉन्च में आप जाएंगे तो बहुत सारे मुद्राएं देखे होंगे दिल्ली टर्मिनल 1 में. तो ये पोस्चर जो है ये अभय की पोस्चर है. अभय अर्थात क्या, निर्भय, हिम्मत, भय नहीं होना, निश्चिंत होकर प्रयास करना, प्रयत्नशील रहना, इसको अभय कहा जाता है. तो देवी जी कहती है, देखो अगर तुम्हें कोई भी, ये धन बोल के ओनली नॉट रुपीस, किसी भी प्रकार का तुम्हारे पास जो भी खजाना है, इट कुड बी अ टैंजिबल खजाना, इट कुड बी एन इनटैंजिबल खजाना. इनटैंजिबल खजाना मतलब शक्ति हो सकता है, नॉलेज हो सकते हैं, स्किल हो सकते हैं. टैंजिबल खजाना मतलब एसेट्स. तुम्हारे जितने भी एसेट्स हैं उसको जितना यूज करोगे, जितना इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करोगे उतना बढ़ोतरी होगी. एसेट का रूल नंबर 1 है कि एसेट को अगर आप स्थिर कर देते हैं तो उसकी शक्ति कम होती जाती है. और जो हम लोग को इकोनॉमिक्स में सिखाया गया है, टाइम वैल्यू फॉर मनी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स, आज से 10 साल पहले 100 रुपया का जो कीमत था, 100 रुपया से जो आप खरीद सकते थे, आज उस 100 रुपया से उतनी चीज आपको नहीं मिलेगी, ये तो हम जानते हैं. परंतु लक्ष्मी जी कहते हैं कि आप उस चीज को जितना री इन्वेस्ट करोगे लेकिन सदउपयोग के द्वारा, सदबुद्धि के द्वारा, बारंबार जितना उसको रोटेट करोगे, जितना री इन्वेस्ट करोगे उतना तुम्हारा खजाना बढ़ता जाएगा. इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, धन दिए धन ना खूटे. एंड इट इज नॉट केवल दान, इट इज इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट. आप बच्चों के प्रति अगर समय दे रहे हैं, चलिए याद करते हैं.
आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज. काम क्रोध मद लोभ मोह वश, आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज. योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी.
So the more you invest, the more it grows. It is related to किसी भी प्रकार का खजाना. लेकिन investment करते समय, जैसे आप अगर अपने just सोचिए, आपके team members हैं, आपके subordinates हैं, आप उनके boss होंगे, आप जिनके प्रति ज्यादा समय दिए हैं, वो ज्यादा develop होता है, और शायद आपके बाद वो उस position का जिम्मेवारी ले पाता है. It's not just because वो अच्छे थे, अच्छे तो होंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी आपके समय का इन्वेस्टमेंट उनके पीछे गया. उसी तरीके से हम अपने बच्चों के प्रति जो टाइम लगाते हैं, लगाना शब्द के बदले हमें कहना चाहिए I am investing time, quality time with them. And it will give returns. Definitely it will give returns. क्योंकि कुछ संस्कार हैं, कुछ शिक्षाएं हैं, जो टीचर दे नहीं पाएगा. जो मात पिता जिस तरीके से, जिस ईमानदारी से, जिस प्रामाणिकता से अपने बच्चों को सिखाएगा, वो कोई स्कूल के पेड बिजनेस में नौकरी करने वाले टीचर शायद उतना दिलेर से, उतना लगन से वो चीज सिखा नहीं पाएंगे. हैविंग अंडरस्टूड दैट, मीनू का पापा पूछते हैं, अच्छा ठीक है देवी जी, और एक चीज बताइए, ये कई लोग बहुत पैसा कमाते हैं परंतु उसके बाद गंवा भी देते हैं, आप मुझे ऐसे कुछ तरकीब बताइए जिसमें पैसा हमारा सस्टेन्ड हो, हमारी वेल्थ जो है वो बढ़ती रहे या तो एटलीस्ट कांस्टेंट रहे लेकिन गंवा नहीं बैठे. तो इसके लिए फिर से लक्ष्मी देवी कहती हैं कि अच्छा हमारे ऊपर के दोनों हाथों में क्या है, क्या है, दोनों हाथों में कमल है, एक कमल से खुश नहीं है क्या, वो दो कमल का क्या जरूरत है, डबल डबल लोटस क्यों है भाई. लक्ष्मी जी कहती है आपके पास जब धन आएंगी तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है, एक है इंटरनल संयम यानी सेल्फ रेस्ट्रेंट, इंटरनल संयम. एंड शी एक्सप्लेन्स इट, इट इज लाइक दिस कि कोई व्यक्ति का, हमारे हर एक के मन के अंदर कुछ अच्छी इच्छाएं हैं और हो सकता है कुछ गड़बड़ वाली अशुभ इच्छाएं भी हैं, परंतु धन की कमी के कारण उन इच्छाओं की अभिव्यक्ति नहीं हो पाया. बहुत अच्छी बात है, उस इच्छाओं की अगर अभिव्यक्ति, अशुभ इच्छाओं की अभिव्यक्ति नहीं हो पाई. अब जैसे ही कोई व्यक्ति के हाथ में धन आ जाता है, उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है और उस समय उनकी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाओं की अभिव्यक्ति शुरू होता है, क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं है। धनवान को कौन रोकेगा, उनको कोई टोकने वाला नहीं है। वो अपने चारों ओर ऐसे लोग रख लेते हैं जो यस सर करने वाले होंगे, उनका गलती दिखाने वाले वो कोई रखेंगे ही नहीं, हां में हामी भरने वाले लोग रखेंगे। तो उनको शिक्षा कहां से मिलेगी? अच्छा, उनके कमाया हुआ धन से खाने वाले, उनके घर वाले भी आवाज उठा के नहीं बोल सकेंगे। और ये होती है, घर में शराब पी के आके चिल्लाने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, कईयों के ऊपर घर वाले कुछ भी नहीं बोल पाते। इसका एक कारण है कि घर वाले उन्हें अन्नदाता के रूप से मानते हैं, सोल ब्रेड विनर, और जिसके कारण उनके दुर्व्यवहार को भी उन्हें डाइजेस्ट करना पड़ता है। दुखद बात है। ये क्यों हुई? क्योंकि हमारी इंटरनल रेस्ट्रेंट, हमारे संयम जो है उसके बारे में और हमारी जो विवेक है उसको हमने खो डाला। सो देवी जी के राइट हैंड में जो लोटस है, उस लोटस दिखाता है कि यू नीड टू बी डिटैच्ड। आपको साक्षी भाव से अपने कर्मों को चेक करना जरूरी है। व्हाट एवर यू डू, जो डिसीशंस आप ले रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, जो खरीदारी के विषय में निर्णय ले रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में निर्णय ले रहे हैं, जो भी कर्म करने के लिए आप निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि जब आप धनवान हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग डाउनस्ट्रीम में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आपका एक निर्णय का गलती केवल आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी, डाउनस्ट्रीम में सभी को इम्पैक्ट करेगा। हाँ या ना? केवल घर वाले नहीं, लेकिन हो सकता है आपके, आप एक बिजनेस खोले हैं, वो बिजनेस बहुत बढ़ गया, आप वहां 1000 लोगों को रख के बिजनेस चला रहे हैं, आपका गलत डिसीशन के कारण उस व्यक्ति का भी नुकसान होगा और उनके साथ जुड़े हुए सभी को नुकसान पहुंचेगा, और इट्स ए बिग बिग क्राइम। अच्छा, दूसरा लोटस का क्या यादगार है? दूसरा लोटस का क्या, एक लोटस तो समझ में आया, इंटरनल रेस्ट्रेंट। दूसरा लोटस का है कि जब हमारे पास धन संपदा होती है तो बाहर से बहुत सारे प्रलोभन हमारे पास आएंगी, बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, बहुत सारे शॉर्ट पैसा बनाने के तरीके बताएंगे लोग, बहुत सारे इल्लीगल प्रपोजल्स आएंगे, लेकिन हमारा परख साक्षी होकर, ये ठीक से हम कर पाए, डिटैच होकर, उन बातों के इन्फ्लुएंस पे हम ना आ जाएं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एंटी सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे अनएथिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, चाहे इंटीग्रिटी एंड कंप्लायंस से रिलेटेड हो। ये पेपर हम सभी को, जो भी आगे बढ़ रहे हैं, जो भी जिम्मेवार पोजीशन में है, जिनके नीचे 5 या 10 लोग कार्यरत हैं, हम सभी को ये सिचुएशन फेस करना होगा। और लक्ष्मी जी कहते हैं कि इस बात में भी आपको सुजाग रहना है, इन दोनों ही बातों में, अंदरूनी इच्छाओं के बारे में आपको सुजाग रहना है कि कहीं हमारी डिसीशन तो गलत नहीं हो रहा है, और दूसरा है बाह्य जो पेपर्स हैं, उस पेपर के बारे में भी हमें सुजाग रखना है। और इसीलिए लक्ष्मी जी के वाहन जो है वो क्या दिखाया गया है, आउल। आउल का विशेषता क्या है, वो रात में बहुत अच्छी तरह से सब कुछ देख सकता है, तो हमारी परख की शक्ति जो है और हमारी निर्णय शक्ति है उसमें भी फर्स्ट है परख, एबिलिटी टू जज, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि क्या सच है, और सब चीज धुंधला रहेगा, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा आपको, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन के बीच में से भी एग्जैक्ट पिकअप कर लेना, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या उचित है इस समय क्या अनुचित है, ये जानना बहुत जरूरी है। टू समराइज, एक है इनर डिसिप्लिन का जरूरत है अगर धन को हमें सस्टेन करना है, दूसरा है हमें हमारी आउटर टेम्पटेशंस जो बाहर से प्रलोभन आ रहे हैं उसके बारे में हमें सुजाग होना बहुत बहुत जरूरी है। आपको ज्ञात हो दुनिया में सबसे कीमती, सबसे कॉस्टली जो धंधा है वो किस चीज का धंधा है? सबसे कॉस्टली, सबसे कीमती, एक है ड्रग ट्रैफिकिंग और दूसरा है वेपन्स का धंधा। वेपन्स, इलीगल वेपन्स का धंधा, ये दोनों सबसे कॉस्टली धंधा है और दोनों ही इलीगल है, दोनों ही समाज के विरोधी धंधे हैं। तो कहीं हम इस प्रकार के प्रलोभन में फंस नहीं जाए, हम इसी में फंसेंगे ऐसा नहीं, लेकिन कई बार कोई सरकार के लॉ को तोड़कर हम कुछ कार्य ऐसा नहीं करें, इससे लक्ष्मी कंसिस्टेंटली रहेंगी नहीं। क्योंकि लक्ष्मी को क्या पसंद है? लक्ष्मी पूजन के समय एक चीज जो हम साथ में खरीद के लाते हैं, क्या खरीद के लाते हैं याद कीजिए? झाड़ू। क्यों लाते हैं झाड़ू? स्वच्छता। किस चीज की स्वच्छता? लक्ष्मी को बहुत स्वच्छता पसंद है। किस चीज की स्वच्छता? वो झाड़ू जो हम लोग लगा के बाजू वाले के सामने धूल को, भारत में देखें दुकानदार कैसे दुकान साफ करते हैं, तो लक्ष्मी कैसे आएगा? झाड़ू लेके आधा धूल इधर करते हैं, बाजू वाले लेफ्ट साइड वाले आधा धूल इधर करते हैं, बस हो गया हमारी सफाई। अब भारत एकमात्र देश है जहां पे आधा धूल लेफ्ट, आधा धूल राइट, आधा धूल रोड पर, हो गया मेरा स्वच्छ भारत? नहीं। तो लक्ष्मी जी कहती है नहीं, इस चीज को थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है। इट्स नॉट ओनली स्थूल स्वच्छता बट इट्स इंटरनल क्लीनलीनेस ऑल्सो, यानी ऑनेस्टी हमारे अंदर, इंटीग्रिटी कितनी है। अब भाभी जी से रहा नहीं गया, वो चुपचाप बैठी है, मीनू पूछ लिया, ईशान पूछ लिया और भाई साहब भी क्वेश्चन पूछ लिया, अब भाभी जी से रहा नहीं जा रहा है। भाभी जी पूछा, अच्छा ठीक है मेरा एक क्वेश्चन है, और वो पूछती है, अच्छा हमने सुना है आप दो जो देवियां हैं आप लोगों का आपस में बनता नहीं है, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी आप दोनों का आपस में बनता नहीं है, ऐसा खबर मिलता है मुझे, बचपन से हमें सिखाया गया, क्या ये सच है? भाभी जी वो चटपटा वाला क्वेश्चन पूछ डाली, क्या ये सच है आप लोगों का बनता नहीं है? तो देवियां दोनों मुस्कुराने लगी। और अभी देवियां जो कहती है वो ध्यान से समझिए, वो कहते हैं हे मानव, तुम अपने नजरिया से देखते हो और जिंदगी में हर अच्छे चीज, इनफैक्ट इंसान को जीवित रहने के लिए दो दो जुड़वे शक्तियां हैं जो एक दूसरे के संपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एंड दे को एग्जिस्ट और एक के बिना दूसरे से काम नहीं चलेगा, जिंदगी नहीं चलेगा। एंड देन लक्ष्मी और सरस्वती कॉल्स द फोर पीपल फॉर अ डेमो। हम लोग भी डेमो करें, देखें एक दूसरे का संपूरक कैसे हैं, ठीक है? अच्छा, हमारे सबसे आवश्यक चीज जिंदगी में जिंदा रहने के लिए तुरंत कौन सी चीज की आवश्यकता है? श्वास? यस, एग्रीड, ओके ठीक है। चलिए हम लोग श्वास भरेंगे, तैयार हैं सभी? ओम ध्वनि लगाना नहीं है, केवल श्वास भरना है, लेकिन एक शर्त है, हम जैसे जैसे हाथ ऊपर करते जाएंगे आपको श्वास भरना है, रोकना नहीं है, ठीक है? ओके, छोड़ना नहीं, श्वास केवल भरते जाना है। रेडी, श्वास छोड़ दीजिए, शुरू कीजिए, श्वास भरिए 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 भरिए, भरते जाइए, छोड़ेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, भरते जाइए भरते जाइए और भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए भरते भरते जाइए, रुकने का नहीं, रुकने का नहीं, रुकने का नहीं, और भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए। आप मुस्कुरा रहे, क्या हुआ? हो नहीं सकता। अच्छा, श्वास छोड़ना जरूरी है, ओके। तो ये एक दूसरे का संपूरक हुआ भरना, मैं भर रहा हूं छोड़ने के लिए और छोड़ रहा हूं भरने के लिए, यस और नो? यस। सर्दी और गर्मी दोनों ऋतु की आवश्यकता है, भारत में 6 ऋतु है बट मोटे मोटे रूप से यस सीजन्स, ओके। आप हाथ को, इसको एक्सटेंशन कहते हैं, हाथ है ना, एडक्शन एब्डक्शन, क्या मैं एक करके छुट्टी ले सकता हूं, एडक्शन करके, एबडक्शन नहीं करूं? मैं हाथ केवल फैलाना चाहता हूं, सिकुड़ना नहीं चाहता हूं, ये पॉसिबल है? हां या ना? तो ये एक दूसरे के संपूरक शक्ति है, और इस संपूरक शक्ति को समझना बहुत बहुत जरूरी है। दिन और रात दोनों में से कौन सा अच्छे हैं माताएं? बहनें बताइए, दोनों अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, देखिए अभी तो सब समझ गए। अभी देखिए, तो इसको ये दरवाजा के ऊपर कई लोगों ने शुभ चिन्ह के रूप से लगा के रखते हैं। हाँ, इसको इन और यांग कहा जाता है, चाइनीज भाषा में इसको इन और यांग कहा जाता है। जिंदगी में कुछ शक्तियां जुड़वा शक्तियां हैं, और ये जुड़वा शक्ति को इन और यांग कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी मुस्कुरा के कहती है, हम लोग इन और यांग जैसा दो बहने हैं, वी आर सोल सिस्टर्स, एक दूसरे के संपूरक हैं। विद्या के बिना धन नहीं हो सकता, और धन के बिना सुख नहीं प्राप्त हो सकता, जिसके लिए आप विद्या उपार्जन कर रहे हैं। और ये एक मानव के संपूर्ण जिंदगी के लिए ये आवश्यक है कि दोनों ही विशेषता उनके अंदर हो। वी एग्री, यस और नो? यस। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? हमारे पास धन है, हम किसी न किसी तरीके से विद्या को उपार्जन करना पड़ेगा, या तो दूसरे किसी का सलाह लेना पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों का संतुलन होना बहुत बहुत जरूरी है। अब मीनू की मम्मी, एक क्वेश्चन फिर भी उनको मजा नहीं आया ये आंसर में, बोलिए आप दोनों बहने हैं, आपस में ऐसे ही जस्ट टाल रहे हैं मेरे क्वेश्चन को। अच्छा ये बताइए, आप दोनों में से बड़े कौन हैं? कौन बड़े हैं? कौन बड़े होंगे, लक्ष्मी जी बड़े होंगे या सरस्वती जी? सरस्वती। अच्छा, किसने बोला लक्ष्मी बड़ा होगा या सरस्वती? डिमांड किसका ज्यादा है? डिमांड तो लक्ष्मी का ज्यादा है, स्कूल में सरस्वती, और वो गिटार गिटार विटार बजाने वालों के लिए सरस्वती, और अदरवाइज सब जगह तो लक्ष्मी जी का डिमांड है। तो इन लोगों ने कहा, हम लोग दोनों बिल्कुल बड़े नहीं हैं, हम लोग एक दूसरे के संपूरक हैं, संतुलन बनी हुई है, बड़ी छोटी का बात नहीं है। बड़े हैं हमारी माता जी, ये बड़े हैं, और बड़े बोलकर वो दिखा दिया देवी दुर्गा को। वो कहा, नहीं, ये तो आप अपने माता जी का सम्मान रख रहे हैं, इसके लिए आप उनको बता रहे हैं। तो लक्ष्मी और सरस्वती जी कहती है, नहीं, ये देवी दुर्गा जो है, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, इसीलिए ये बड़े हैं। और ये विशेषताएं जो हैं देवी दुर्गा का, ये हमारे अंदर, हम उन बातों को अहमियत दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सी बातें हैं? क्यों देवी दुर्गा को लक्ष्मी और सरस्वती आगे रखा? नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रेस्पेक्ट, ये सब सिंबॉलिक है। फर्स्ट थिंग इज, देवी दुर्गा जी की विशेषता है कि देवी दुर्गा स्थूल रूप से डिड नॉट एग्जिस्ट। देवताओं का एक संकट क्रिएट हुआ, और वो महिषासुर थे, उस असुर को वध करने के लिए देवी दुर्गा का आवाहन किया गया। सो अ काउंसिल ऑफ देवी देवता डिस्कस टुगेदर कि हम लोग अकेला कोई झेल नहीं पाएंगे महिषासुर को, सो लेट अस बिल्ड देवी दुर्गा। तो देवी दुर्गा उनके आवाहन के बेसिस में उपस्थित हुई है, आविर्भाव हुआ है उनका, उनका कोई जन्म नहीं हुआ है, भले मानते हैं वो पार्वती के अवतार है, बट अच्छा, आवाहन किया गया है, आविर्भाव की गया है, उसका मतलब क्या है? देर इज अ नीड, देर इज अ पर्पस, एंड दैट पर्पस हैज टू बी सॉल्व, यस और नो? तो सर्वोपरि है पर्पस। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, जिस कार्य में बहुत क्लियर उद्देश्य है, वो उद्देश्य सर्वोपरि है, और उस उद्देश्य के बाद उसको करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए, वो करने के लिए जो स्किल चाहिए, वो करने के लिए जो कॉम्पिटेंसीज चाहिए, वो करने के लिए दूसरे जो फिजिकल रिसोर्सेस चाहिए, उसको डिप्लॉय किया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले रिसोर्सेस डिप्लॉयड हैं और हम ढूंढना शुरू करें अच्छा इनको कहां काम पे लगाएं। नहीं, दिस डजंट वर्क दैट वे। सो सर्वोपरि है पर्पस, और देवी दुर्गा का शक्ति इसीलिए है कि शी हैज अ पर्पस एंड द पर्पस इज वेरी क्लियर। शी इज वर्किंग ऑन अ मिशन मोड। आज देश को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत है? देश को चलाने के लिए पर्पस का जरूरत है, देश को चलाने के लिए मिशन मोड का जरूरत है। जो आप कई एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे फॉरेन पॉलिसीज के बेसिस में, हमारे इंटरैक्शंस जो हो रहे हैं दूसरे देशों के साथ, अनेक प्रकार के प्रेशर के बावजूद भी इंडिया अपना एक फर्म स्टैंड ले रहा है, ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि पर्पस क्लियर है एंड देर इज सम मिशन बिहाइंड दिस, देर इज अ विजन बिहाइंड दिस। उसमें गलतियां हो सकता है, दैट्स डिफरेंट, बट पर्पस होना ये सर्वोपरि है। सामर्थ्य होना, धन होना, साधन होना, स्किल होना, वो उसके बाद। इसीलिए वो दो देवियां दुर्गा को सर्वोपरि कर रही हैं। द सेकेंड पार्ट इज दुर्गा जी का मिशन के ऊपर फुल फोकस है, 100% फोकस है, अनडिस्ट्रैक्टेड फोकस है। तीसरी बात, उनके 10 भुजा, कोई व्यक्ति का तो 10 भुजा होता नहीं, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेशन है, तो दुर्गा देवी को 10 भुजा दिखाया जाता है, और दसों ही शस्त्र जो है एक भी उनका खुद का नहीं है। तो कहां से आया, कहां से आया, किसने दिया? सभी देवी देवताओं ने, उनका जो यूज नहीं हो रहा है वो शस्त्र ले जाओ ऐसा नहीं, देवी देवताओं ने उनको आवाहन किए हैं ना, तो उनके बेस्ट शस्त्र जो है उसने दुर्गा के हाथ में भर दिया, दुर्गा देवी जी के हाथ में। उसमें हनुमान जी भी एक अस्त्र दिए हैं, गदा हनुमान जी से आया है, शंकर जी से त्रिशूल आया है, इस प्रकार से। नाउ दिस शोज द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क। क्योंकि आज के दिन पे समस्याएं इतनी कॉम्प्लेक्स हैं, एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, जहां पे एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल के प्रति सुलझाना ये बड़ा मुश्किल है, और इसके लिए इस चीज का बहुत बहुत आवश्यकता है। एंड शी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ कोलैबोरेशन। तो कोई भी चीज अगर सभी मिलके करें तो सुखमय संसार आ सकता है। और दुर्गा जी के और सभी देवी देवताओं के अंदर एक विशेषता है, स्नेह और शक्ति का। अब लास्ट क्वेश्चन वो मानव पूछता है, अच्छा ये तो हमने सब पूछ लिया, अब ये बताइए हमको सब कुछ चाहिए, हमको शक्ति चाहिए, यश चाहिए, सुख चाहिए, सेहत चाहिए, शांति चाहिए, दीर्घायु चाहिए, सारे चाहिए, विद्या चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो देवियां फिर कहती हैं, आप देखो दुर्गा जी क्या कर रही है। आप कोई भी दुर्गा मंडप में जाएंगे तो दुर्गा देवी के ऊपर एक शिव जी का चित्र रखा रहता है। क्यों? क्योंकि वो शिव शक्ति है। तो दुर्गा देवी शिव की उपासना कर रही है, शिव को याद कर रहे हैं। तो लास्ट शिक्षा देवियां ये दे रही है कि अगर तुम सर्व कुछ चीजों से संपन्न बनना चाहते हो तो तुम्हें चार चीजों को धारण करना है, प्रैक्टिस करना है। पहला चीज है तुम्हारे समझ को दिव्य बनाना है। हम अपने समझ को, मानवीय समझ को दिव्य समझ में परिवर्तन करें। और ये कैसे होगा? ये ज्ञान ध्यान से होगा, थोड़ा सा अंतर्मुखता, थोड़ा सा विचार सागर मंथन, थोड़ा सा अवलोकन की आवश्यकता है। दूसरी बात, हमें निरंतर कनेक्टेड रहना है परमात्मा के साथ, जिसका प्रयास वारंबार यहां योगाभ्यास से कराया जाता है। तीसरी बात, हम जो भी चीज प्रैक्टिस करते हैं उसे जीवन में अजमाना होगा, जिसको कहते हैं धारणा, धारण करना, इसको धारणा कहते हैं, इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज, इनकल्केशन ऑफ स्किल्स, इनकल्केशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज, इनकल्केशन ऑफ न्यू इंसाइट्स, इनकल्केशन ऑफ अ पर्सपेक्टिव, नजरिया में परिवर्तन लाना, ये हमें धारण करना है। और चौथी बात, हमारी एकाग्रता भी बढ़ गई, हमारी परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति बढ़ गई, और हमारे अंदर वो शक्तियां भी आ रही है प्रैक्टिस के थ्रू, हम उसको धारण भी कर रहे हैं, तो हमारा समाज के प्रति, हमारे साथियों के प्रति ये कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें भी सहयोग दे, जिसको भारतीय भाषा में, भारतीय संस्कृति में हम सेवा कहते हैं। तो समझ, एकाग्रता का अभ्यास उस परम शक्ति के साथ जिसको योग कहा जाता है। तीसरा है अच्छे गुणों को, अच्छे कॉम्पिटेंस को जीवन में धारण करना। और साथ साथ ये तीन के साथ जब हम लोकार्पण होकर सेवा करते हैं, तो ये चार चीज अगर हम करते हैं तो हमें सब कुछ मिलेगा, हम मानव जो जो चाहते हैं देवी देवताओं से, और उसमें से भी खास एकाग्रता को ईश्वर के साथ जोड़ना बहुत बहुत क्रिटिकल है। तो लास्ट में एज यूजुअल मानव अपना रंग तो दिखाएगा ही, बोलते हैं देवी जी अभी तो हमारा स्टेशन आ रहा है, थैंक यू सो मच, एक सेल्फी ले लेते हैं। देविया बोला ठीक है भाई सेल्फी ले लो, चलो याद करो, लेकिन भूलना जाना है ये शिक्षाओं को, भूलना नहीं। तुमने जो 6 questions पूछे, उस 6 questions के जो पर्सपेक्टिव मिली उसको अपने जीवन में उतारना। और वो खुश होके उतरते हैं कौन से स्टेशन पे, आबू रोड। और कहां फिर आते हैं खुशी मनाने, इसी हॉल में जहां आप पहुंचे हैं। आप खुद के लिए ताली बजा लीजिए। तो जिंदगी में नई शुरुआत नई नजरिया के साथ करने के लिए हम सब तैयार हो जाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि के शुरुआत में, देवियां हमें शिक्षाओं से भर दी इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए 2 मिनट प्रभु स्मृति में बैठेंगे। बहनों को कुछ बोलना है और आगे का अनाउंसमेंट भी कर दीजिए, फिर बाबा की याद में थोड़ी देर बैठे। थैंक यू।
ओम शांति। तो मीनू और ईशान के साथ आप सभी ने भी हम सफर में सैर करके देवियों का दर्शन किया। आज नवरात्रि का पहला दिन है और कितना सुंदर आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए भाई जी ने हमें देवियों का दर्शन कराया। तो फिर एक बार हम भाई जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। 2 शब्द कहना चाहूंगी कि आपके मार्गदर्शन का मिला हमें उत्तम उपहार, हर शब्द को किया हमने दिल से स्वीकार, जागृत हो गए हमारे नए नए संस्कार, और आपको करते हैं हम अनंत आभार, अनंत आभार। अभी भाई मेडिटेशन कराएंगे, फिर आप सभी को यहीं बैठे रहना है, सभी गाइड्स ध्यान देंगे। जो भी आपके गाइड्स है वो आपको अभी प्रकाशमणि गार्डन में लेके जाएंगे, और वो दादी प्रकाशमणि गार्डन में एक बहुत सुंदर लेजर शो है जो हम देखेंगे। जो मेन गेट है, मेन गेट से एकदम 5-7 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस है, तो सभी वॉक करते हुए ही जाएंगे। अगर किसी को दिक्कत है चलने में, तकलीफ है, तो गेट के बाहर रिक्शा अवेलेबल है, 20 रुपीज ही होता है चार्ज। तो जो जिनको दिक्कत है वो बाय ऑटो जाएंगे। तो सभी अपने अपने गाइड्स के साथ जाएंगे। और अगर ऐसे कोई है जिनको कोई गाइड नहीं है, या कोई ऐसे अकेले हैं, तो फिर वो हमें संपर्क करें, हम उनके लिए व्यवस्था करेंगे।
करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने जीने की ये है कला, इसके बिना जीवन